अब इस जंग के अंदर के कुछ हम देखेंगे कि फिगर्स, फरीकैन के मकतूलीन, इस गजवे में कुल 93 यहूदी मारे गए और मुसलमान शहदा की तादाद 15 या 16 या 18 थी। कितने हैं ज़रा नोट करें, 15, 16, 18। और इतने दिन के बल्कि महीनों पे ये मुहासरा तारी हो गया है। टोटल 93 मर्डर। कोई पिछले एक महीने पुराने अखबार खोल के ले आइए और दुनिया के नक्शे पे फैली हुई जंगें और जो भी काम हो रहे हैं उनके अंदर मरने वालों की तादाद नोट कर लें। एक एक दिन में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। महाजरीन हबशा, अबू हुरैरा और अबान बिन सईद रदी अल्लाह अन्हुमा की आमद, हज़रत अमर बिन उमैया दमरी जो निजाशी के पास रसूलुल्लाह का ख़त लेकर गए थे, जब वो महाजरीन हबशा को साथ लेकर वापस हुए तो उनमें से एक जमात ने खैबर का रुख किया जिसमें जाफ़र बिन अबी तालिब और अबू मूसा अशरी थे। ये लोग रसूलुल्लाह के पास पहुँचे तो खैबर फतह हो चुका था, अभी माल गनीमत तकसीम नहीं हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र को बोसा दिया यानी किस किया और फरमाया, वल्लाही मैं नहीं जानता कि मुझे किस बात की ज़्यादा खुशी है, खैबर की फतह की या जाफ़र की आमद की। यहाँ से देखिए अल्लाह के नबी का दिल कैसे सहाबा में और साथियों में अटका रहता था। और ये जुमला मैंने कई दफ़ा बोला भी है और सोचा भी है कि बाज़ दफ़ा कोई बड़ी खुशी का मौका होता है हमारे स्कूल में, कोई कोर्स पूरा हुआ, कोई कोर्स शुरू हुआ और इसी तरह की कुछ और खुशियाँ भी मिलती रहती हैं, लेकिन उसमें कभी कोई वाकई ऐसा बंदा आ जाता है जिसकी बड़ी तड़प होती है, तलब होती है। तो मैं उस दिन अल्लाह के नबी का ये जुमला सोचती हूँ कि आज मेरा दिल इतना खुश क्यों है, क्या कोर्स के शुरू होने पे या फलां और फलां के आने पे। तो यहाँ से पता चलता है कि लोगों को तवज्जो दिया करें, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ जा रहा, इस पर थोड़ी सी नज़र रखें तो लोग खुश होते हैं। और यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह के नबी के अंदर जज्बात भी थे, बेहिस इंसान नहीं थे आप, किसी के आने और जाने की खबर नहीं, बेचारे काम में ही लगे रहे, मशीनों से खेलते रहे, पता ही नहीं चला कोई आया भी है कि नहीं आया। कभी ऐसा ना करें, बैलेंस लाएं अपनी पर्सनालिटी में, काम के वक्त में काम, मशीन के वक्त में मशीन और इंसानों के वक्त में इंसान। जो कुछ भी आप करते हैं ना, आप देखिए कि उसका गोल क्या है, कि आप लोगों को अच्छी सर्विस दें। तो सर्विस देने में इतने मगन परेशान, तेवरियां माथे पर डाली, इधर से उधर पतीले उठाते रखते, दूसरे आपके चेहरों को देख रहे हैं कि इनको क्या गम लगे हुए हैं। ऐसा ना करें, लोगों को देखें, सब काम छोड़ के बंद करके दरवाज़ा बाहर आके लोगों को मिलें कि आपके आने की मुझे कितनी खुशी हुई है। आप फील करेंगे कि इससे लोग आपके अच्छा खाना खिलाने से भी ज़्यादा खुश होंगे। हर इंसान तवज्जो चाहता है, किचन से निकला तो किचन में किसी ने अच्छी बात की, गुजरा तो ऑफिस टू में किसी ने अच्छी बात की, स्माइल, क्या हाल है कैसे, ऑफिस वन वाले ने स्माइल दिया, थोड़ी देर बिठा लिया, बाहर के रिसेप्शन पे बैठे ने थोड़ी प्यार की बात की। ज़रा बताइए कि क्या वो बंदा कभी भी आपके स्कूल से जाना चाहेगा? नहीं जाएगा। उसका दिल अटकेगा कि मैं कल फिर आऊँ, यहाँ तो इतने मोहब्बत करने वाले बैठे हुए। लेकिन हम मोहब्बत में घरेलू बातें नहीं शुरू कर देनी, अल्लाह की पनाह। बहरहाल आगे देखते हैं कि हुआ क्या। यहाँ एक और बात नोट कीजिएगा, खैबर सन 7 हिजरी में हो रहा है और इस वक्त कुछ लोग आपको मिल रहे हैं और माल गनीमत अभी तकसीम नहीं हुआ। क्या किया माल गनीमत से? और जब माल खैबर तकसीम फरमाया तो इन्हें भी माल गनीमत से हिस्सा दिया। ये क्यों दिया? लड़े थे बोला, घर से निकले थे? नहीं। क्यों दिए? इसलिए कि मौका मिलता तो ये ज़रूर लड़ते, ये तो पैदा ही आज हुए हैं, तो अब जो पैदा ही नहीं हुआ हुआ था अब उसको कहाँ पकड़ेंगे, ये तो सफ़र में थे। दूसरी वजह ये कि ये जब खबशा से निकले होंगे तो इतने दिन इनको भी खैबर पहुँचते हुए लग गए होंगे। अगर आप नक्शा जहन में लाएं, बहुत दूर था खबशा खैबर से, पहले खबशा से आप देखिए आएंगे तो जद्दा, फिर जद्दा से मक्का, फिर मक्का से मदीना, फिर मदीना से आगे कितना सफ़र किया तो फिर खैबर। यहाँ से पता चलता है कि जहाँ अल्लाह के नबी होते थे ना, लोगों का दिल चाहता था कि वहाँ हों। ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी मदीना में नहीं, तो ये कि चलो मदीना में ही बैठते हैं फिर आते हैं, तलब और तड़प इनको लेते हैं। और ये भी पता था कि खैबर के लिए थोड़े दिन के लिए गए हैं, वापस मदीना ही आना है, पड़ाव तो नहीं डालना, लेकिन दिल अटका हुआ था ना अल्लाह के नबी के साथ, तो वो इस दिल के साथ खैबर तक पहुँच गए। बाकी मुहाजरीन हबशा से बच्चों और औरतों समेत सीधे मदीना तशरीफ ले आए थे। فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے، وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہو گئے تھے، رسول اللہ نے انہیں بھی خیبر کی غنیمت میں سے حصہ دیا. اس کو رک کے سوچئے گا، ابو ہریرہ کون ہے رضی اللہ عنہ؟ سب سے زیادہ حدیثیں ان سے ملی، امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ہے ان کا. کتنے سال اللہ کے نبی کے ساتھ رہے؟ 3 سال. 7 میں آ رہے ہیں، 10 میں آپ جا رہے ہیں دنیا سے، اور اتنی حدیثیں کیسے لے لی؟ آپ کہتے ہیں ہم تو 3rd 4th batch ہیں، ہمیں کہاں جگہ ملنی ہے کبھی اسکول میں، ہم کہاں کسی کے پیارے ہو سکتے، اور ہم تو آئے باہر سے، ہم نئے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو ہر وقت یہی دھوکہ رہتا ہے کہ ہم نئے لوگ ہیں، ہم پرانوں کی جگہ نہیں لے سکتے. تو اس صفحے کو پھاڑ دیجئے. آپ تندہی کے ساتھ، تن من دھن اخلاص، اللہ کے تقوی کے ساتھ کام شروع کریں، اللہ 17 سال پہلے آئے ہوئے لوگوں سے آپ کو آگے کر دے گا. یہ حضرت ابو ہریرہ اس کی دلیل ہے. بس کیا کیا تھا انہوں نے کہ یہ اٹھتے نہیں تھے، ڈیڈیکیٹڈ ہو گئے، فوکسڈ ہو گئے، ہاسٹل میں آ گئے کہ نہیں، گھر سے آنے اور جانے میں تو اور کئی مسئلے بیچ میں، شادی نہیں کی اللہ کے نبی کی زندگی میں، کام پہ نہیں جاتے تھے کہ مجھے کچھ عرصہ فوکس ہو کے پڑھنا. آپ یہاں کلاس میں بیٹھے، شام کو یہاں آپ کسی جاب پہ پہنچ جائیں، رات کو تھکے ہارے آئیں تو گھر کے کام کریں، کوئی مہمان آ گیا، کوئی ویکینڈ آ گیا تو اور آزمائش، اگلے دن آپ اس کلاس میں آ کے فوکس ہوں گے؟ الا ماشاء اللہ جو آتے ہیں وہ ان کا بہت بڑا جہاد ہے اور اللہ ان کو اس کی جزا دے، لیکن فوکسڈ ہو کے کام کو کرنا یہ بندے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ کو اپنے لیے ایک سمبل بنا لیں نئے آنے والے کہ میں نے بھی ابو ہریرہ کی طرح اپنی خوبیاں اسلام کو دینی ہیں تاکہ اسلام نکھرے اور اسلام کی فتح. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ صرف قربانی دینے والے آ جائیں نا اگر، تو پورا سسٹم درست ہو جاتا ہے. اللہ نے خوبیاں مختلف دی ہیں لوگوں کو، ہر ایک میں ہر خوبی ہے بھی نہیں ہے. تو اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو اس پہ کڑنے اور جلنے اور دکھنے اور برا ماننے کی بجائے کہ کام ٹھیک نہیں لوگ کرتے، آپ شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو کام کی سمجھ دی ہے، کر سکتے ہیں کر لیں، کرا سکتے ہیں کرا لیں. اور کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، جو اللہ کے راستے میں جب بھی نکلا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے. فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے، وہ ایک سریہ لے کر نجد تشریف لے گئے تھے اور اپنی مہم پوری کر کے خیبر آ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا حصہ نہ رکھا. یہ کیوں نہیں رکھا جی؟ دیکھیے وہ لوگ جو کچھ نہیں کر رہے، کہاں سے چل کے آپ نے ان کو حصہ دے دیا، ابو ہریرہ کو بھی دے دیا، لیکن ابان بن سعید کو نہیں دیا کیونکہ وہ ایک دوسری جگہ سے لے کے آگے تھے حصہ. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ دیکھیے، اور صحابہ کبھی لڑتے پھڑتے نہیں تھے، مجھے یہ دیتے ہیں ان کو یہ دیتے ہیں، مجھے تو یہ ہوتا ہے، میرا تو یہ معاملہ ہے، دوسرے تو یہ، میں تو اتنا کام کر کے بھی مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ملتا، دوسروں کو مل جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے پورے اسکول میں، لیکن عموماً دین کی جگہ پہ ساتھی آپس میں ہی تقابل کرتے رہتے ہیں، روتے ہی رہتے ہیں، اس کو یہ ملتا ہے مجھے یہ ملتا ہے، اس کو یہ پروٹوکول مجھے یہ پروٹوکول. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی سمجھ دیں. خیبر کی تقسیم، جب یہود نے امان حاصل کر لی تو جلاوطنی سے پہلے ایک نئی تجویز پیش کی. انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیں اور ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں، اور پھل اور غلے کی جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا آپ ہمیں دے دیں گے. آپ نے اس شرط پر اسے منظور کر لیا کہ آپ جب چاہیں گے انہیں خیبر سے جلا وطن کر دیں گے. چنانچہ اس شرط پر وہ باقی رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب کہ انہوں نے شر اور خبث کی راہ اختیار کی، یعنی خبیثی کی غلط حرکتیں کی، تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا. یہاں آپ کی بہت خوبصورت لیڈرشپ کوالٹی دکھتی ہے. اگر آپ سب یہود کو نکال دیتے تو مسلمانوں کے پاس نہ تو ایکسپیرینس تھا، نہ ان کو فصلیں اس طرح کبھی پہلے کاشت کرنے کا موقع ملا، تو پھر وہ خیبر برباد ہو جانا تھا نا. مل تو جانا تھا مسلمانوں کو، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہونا تھا. آپ اس کو آج کے دور میں سمجھیے، کسی بھی مثال کو لے لے بغیر نام لیے، دنیا کا کوئی ملک جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے، चलिए अच्छी बात की मिसाल है तो जापान का नाम ले लेते हैं। आप देखते हैं कि जापान का लफ्ज़ आ जाए ना तो क्वालिटी का नाम आ जाता है। गाड़ियाँ हों, कंप्यूटर हों, कुछ हो, सारे उनके दिमाग चल रहे हैं ना, वहाँ काम कर रहे हैं, मशीनी काम चल रहे, टेक्निकल काम, या आप कोई हलाई काम, कोई अमेरिका का, कोई नासा का, कोई भी प्रोजेक्ट सामने ले आए, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं ना, सिस्टम बना हुआ है, एकदम सब लोगों को निकाल दिया जाए, चलो भाई जाओ, अब क्या होगा? आप हम जैसे लोग नासा को कंट्रोल कर सकते हैं? कहते हुए भी हंसी आ रही है। इल्ला माशाल्लाह, क्या हम वो गाड़ियाँ बना रहे हैं? बाद में गाड़ी चली जाएगी, पता चलेगा इसके अंदर तो हमने बुला पुर्जा लगाया ही नहीं, हमने कहा था ऐसी चल जाएगी, तार बस कच्चा सा जोड़ दिया था, फिर देखेंगे, और वो नट तो लगाना भूल ही गया, ढीले ही कर दिए। ये बेतरतीबियाँ होती हैं ना, तो अब क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता जापान का नाम डूब जाएगा। दुनिया के मामले में अल्लाह का सुल याद रखे कि काम जीतता है, चाहे मुसलमान करे या काफिर करे। आज जो दुनिया के काफिर हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये कोई कम कपड़े पहनने की वजह से तरक्की कर रहे हैं और पिक का गोश्त खाते हैं इसलिए तरक्की करते हैं? नहीं, इसलिए तरक्की करते हैं कि वो क्वालिटी का काम करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने ये सजेशन कबूल की और ज़्यादा के शर्त के, जब हम चाहें तुम्हें निकाल दें। क्या मुसलमानों को इसमें बेनिफिट नहीं मिल सकता था? थोड़ी सी ट्रेनिंग ली, कुछ साल उनके साथ आप लोगों को लगाए, और जब वो सब ट्रेन हो जाए, कहे चलो भाग जाओ, फ़ायदा फिर भी इसमें मुसलमानों का है। और यहाँ देखिए कि ये ऑफ़र उनकी तरफ से आई थी, तो बाज़ दफ़ा दुश्मन अपना फ़ायदा सोच रहा होता है लेकिन इस्लाम को फ़ायदा हो जाता है। और आप देखिए कि एक और बात, कि वो अपनी आदत से नहीं गए और उन्होंने शरारत की, तो अल्लाह के नबी ने उस शरारत को बर्दाश्त नहीं किया। तो गोया कि जो अल्लाह के नबी का मिजाज था, सहाबा का भी वही मिजाज था। याद रखिए कि नबी की ज़िंदगी में असूल कुछ और होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, और आपके दुनिया से जाते ही बदल जाते हैं। सहाबा ही ढीले हो जाते, अब क्या करें, हम नबी नहीं रहे, फिर लोग नाराज़ ना हो, चलो हम इनकी बातें मान लेते, चलो रूल्स को छोड़ो, चलो जो कहते हैं कर लें। आपको पता है इस्लाम इतना खूबसूरत जो उसने दौर देखा वो नहीं देखना था। अल्लाह के नबी के चंद साल के बाद इस्लाम का झंडा दब जाता, ऐसा हुआ नहीं। सहाबा ने अल्लाह के नबी से बढ़कर आपके असूलों को अपनाया था। अबू बकर का दौर आप पढ़े कि खड़े हो गए कि अगर एक तिनका भी को अल्लाह के नबी के दौर में देता था और अब ना दे तो अबू बकर उससे जिहाद करेंगे। इतनी सख्ती आई कि बाज़ हालात में तो कहते हैं कि अबू बकर अकेले रह गए, सबकी राय दूसरी तरफ थी और अबू बकर तन्हा थे। तुम सब नहीं मानते लेकिन मैं वही करूँगा जो अल्लाह के नबी के सामने करता था। फिर सबको समझ आई और उनको मुर्तद करार दे के उनसे फिर मामला किया गया। तो जब रूल्स बदल जाते हैं ना लोगों के होते और ना होते में, तो पहली बात तो समझ ले कि तकवे की कमी है, खुदा खौफी नहीं है, और अगली बात ये भी समझ ले कि इस काम की संजीदगी अभी दिल में नहीं आई, और अगली बात ये कि जो काम पहले करते भी थे ना किसी के सामने, तो वो उसके डर से करते थे, उसको दिखाने के लिए करते थे, अल्लाह को दिखाने के लिए नहीं। हम में से हर एक के लिए क्राइटेरियन है, मैं किसके लिए काम करती हूँ। देखिए कि आप और हम सब एक सिस्टम का हिस्सा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने पढ़ाने के दौरान एकदम घड़ी देखी तो मुझे कल का दिन याद आ गया। ये बातें अब सिर्फ अमल के लिए हम बात करते हैं, कोई इसमें सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं, लेकिन मैंने जब घड़ी देखी ना तो मुझे याद आ गया कि आपके कल के इस टाइम पे जो मेरे पास इस वक्त यहाँ टाइम है, कल भी मैं आपको पढ़ा रही थी और ऑफकोर्स उससे पीछे कई दिन से हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि रोज़ मैं आपके सामने बैठ के पढ़ाती थी, फिर कल मुझे ट्रेवल करना था कहीं का, मैंने आपके पढ़ाने के लिए क्लास टाइम पीछे करवा लिया। वल्ला ही 100 उज़र मौजूद होते हैं बंदे के पास काम ना करने के, और कोई जबकि पूछ भी नहीं सकता, पूछने वाले कोई ना हो, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया, और आपको पढ़ाने की वजह से इतना टाइट स्केड्यूल था मेरा, जो साथी हैं वो यकीनन इस बात की गवाही देंगे कि नामुमकिन तरीके से कल अल्लाह ताला ने एक बात को मुमकिन बना दिया। आप कहेंगे ना कि ये बातें आप हमें बताएंगे, फिर हम भी कल सोचेंगे हमारे हालात हुए तो क्या होगा, इस सोच से बताऊंगी वरना नहीं। हमें स्केड्यूल के मुताबिक 9 बजे निकलना था एयरपोर्ट से, जो हमारी फ्लाइट टाइम था, लेकिन मेरी ख्वाहिश क्या थी कि नहीं मैंने कल पढ़ा के जाना है, थोड़ा सा तो पढ़ाऊँगा। अब आपको एकदम नए लोग हैं आप और आप आएँ और कुछ कुछ भी नहीं, और मेरा अपना दिल भी नहीं, और मैं हमेशा ये ख्वाहिश रखती हूँ और मेरी अपने मरने के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह मैं इस पढ़ाने वाली जगह से उठ के मरूँ, यही मौत आए जब भी आए तेरे रास्ते में आए। तो मैंने कहा ये नहीं होगा, रात तकरीबन 2 बजे पौने 2 के करीब मैंने वो फाइल रिकॉर्ड की, पूरी की, जो आप लोगों ने मेरे जाने के बाद सुनी है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो। और मैंने कौन सी रिकॉर्डिंग की, जो कि उस एक चैप्टर को छोड़ के थी जो मेरा प्लान था कि मैं आपको 9 से लेके 9:45 के बीच में पढ़ा लूँगी, और बस 9:45 पे, थोड़ा सा मुझे पता है 9 कहते हैं तो 9:30 तो हो ही जाते हैं, 15 मिनट में बढ़वा लूँगी तो निकल जाएंगे। वो फाइल रात को रिकॉर्ड करके सब रख दिया कि मेरे जाने के बाद, ग्रुपिंग वगैरह के बाद फारिग होके आप उसको सुन लेंगे। आपका काम क्यों रुके मेरे जाने से? और आपको पढ़ाने के लिए एक टॉपिक छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बैठे, एक तो थोड़ा सा टॉपिक लंबा, दूसरा मेरे हले 9 की बजाय 9:15 के बाद शुरू हुई क्लास। आपकी रात की रिकॉर्डिंग करने के बाद 2 बजे के बाद यकीन करें कि मैं बिल्कुल थक गई थी और हिम्मत नहीं, वहीं ये टेबल जो है ना, इसके साथ ही मैं लेट गई ऐसे ही, स्कूल में रही रात को, कितनी काम करना है। फिर उसके बाद आंख लगी, जाहिर कि था कि आप अगर जागती रही तो सुबह क्या होगा। उसके बाद से फजर तक सो गए, ऐसे ही जैसे भी पड़े सो गए। फजर के बाद से लेकर 2 सवा 2 घंटे, जो भी टाइम आप लगा लें, वो मैंने अपनी तैयारी को दिया, पर्सनल। मैंने अल्लाह को साथ कह दिया कि अल्लाह ताला तू जानता है कि मैं 4 दिन पहले छुट्टी लिख के दे दूँ, मुझे किसने कुछ कहना है कि नहीं जी मैं जा रही हूँ कुछ दिन के लिए कहीं, तो मुझे छुट्टी चाहिए। आप बैठे करें करें, आप अपने जो मर्ज़ी करें मेरी भला से। मैंने कहा अल्लाह ताला मैंने आपके लिए ये किया है, आप जानते हैं कि लोगों ने कहीं जाना होता है तो उनके क्या हालात होते हैं, और आपको बताया कि मुझे गम क्या लगा हुआ है, या इधर का या उधर का। बहरहाल हुआ क्या कि 9:45 की बजाय 9:10 बज के 10 मिनट तक मैंने आपकी क्लास ली, और जब मुझे मुझे भी फिक्र तो था ही ज़ाहिर है, लेकिन गम क्या था कि टॉपिक बीच में छोड़ देती हूँ तो अगली रिकॉर्डिंग तो थोड़ी आगे की है, वो बीच में मिस होगा आपका, आप क्या परेशान हो जाएंगे। कोई भी टीचर आपके पढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बीच का मिसिंग हिस्सा, लेकिन आपका जहन डिस्टर्ब होगा कि हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ। तो वो पूरा करना मेरी मजबूरी थी, उससे पहले मैं उठ नहीं सकती थी और पूरी स्पीड से बोल रही थी कल। फिर जब वो टॉपिक पूरा हुआ, आपसे इजाज़त ली, आपको मैंने ग्रुपिंग में दिलवाया, निकल के मेरा ख्याल है कि उसके बाद सीधा बाया पहना और एक दो चीज़ों की इंस्ट्रक्शन साथियों को दे के हम गाड़ी में बैठे। 10:15 के करीब वक्त हो चुका था। अब आप सोचें, जो ओस्लो वाले सुन रहे हैं वो मेरी इस बात पे इत्तेफाक लेंगे कि एयरपोर्ट गार्डेमुन कितना दूर है, कम से कम 45 मिनट तो एक रफ एस्टिमेशन होता है। लेकिन आप देखिए, गाड़ी में बैठते मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप डिसाइड कर लो, बिल्कुल नहीं जाना या सामान छोड़ के जाना है और चांस लेना है। सामान तो अब नहीं जाएगा क्योंकि वो काउंटर बंद हो जाता है, तो सोच लो क्या करना है। मैंने कहा जो भी होगा ना अच्छा होगा। मैंने एक बात सिर्फ अल्लाह से कही कि मेरे अंदर हज़ार काम कमियाँ भी होंगी, सुस्तियाँ भी होंगी, लेकिन आपको इस दफ़ा तो यकीन है, या मुझे यकीन था कि मैंने जो भी, अगर आने में अभी भी देर की है तो ये क्लास से उठ के आई हूँ, खाने पीने में नहीं, अपनी तैयारी को नहीं की, जो अल्लाह ने कराई वो हो गई। रात अगर जागी हूँ, कोई कहता पहले कर लेते तो वो पहले वाला मामला भी तेरा ही था। अब क्लास तो मैं आपको सुबह 7 बजे नहीं बुला सकती थी, ये भी 9 बजे ही होनी थी। मैंने कहा अल्लाह अब तू जान, जो तू चाहेगा मैं उस पर राजी हूँ। यकीन करेंगे 10:15 पे हम आपके स्कूल से निकले हैं सीधे, और हम 11:19 पे जहाज़ के अंदर थे और जहाज़ रनवे पे चल गया। मेरी यह बात कोई भी नहीं आप में से मानेगा जो रास्ते के मरहले जानता है। 25 मिनट थी, 11:25 थी, और मेरे दिमाग में ये था 11:55 है, थोड़ी सी से रिलैक्स थी, कोई बात नहीं अभी है टाइम। गाड़ी में बैठते मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं 11:25 है। मैंने कहा इंशाल्लाह काम हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। मैंने एक दफ़ा अल्लाह को कह दिया कि अल्लाह अगर तुझे कोई काम पसंद है तो तू रास्ता बना दे। और रास्ते में यही बातें हो रही कि अच्छा चले क्या होगा अगर ये फ़्लाइट ना मिली, देखें इनकी क्या पॉलिसी। लेकिन मैं मुतमईन थी, और रास्ते में भी कुछ काम ही रखे हुए थे पेपर्स के, जो मैंने गाड़ी में ही सॉर्ट आउट किए कि चले ये काम मैंने, अगर वो करती तो आपको नहीं थी पढ़ा सकती सुबह। अल्लाह ने कैसी आसानियाँ की, ऐसे लग रहा था कि फरिश्ते हमें लेके जा रहे हैं। 45 का रास्ता मेरा हल है, हमारा 25-30 मिनट में हो गया अंदर जाना, फिर लगेज भी था साथ कुछ, फिर सब कुछ हो गया, कहीं कोई मसला नहीं हुआ एक मिनट का। और जहाज़ तक पहुंचने तक हमें नहीं यकीन था कि हम जाएंगे। इवन जब हम काउंटर पे गए तो हम आखिरी थे, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या जहाज क्लोज होगी फ्लाइट, तो उसने हंस के आदमी ने कहा नो 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 अभी नहीं, ये क्लोज हुई। उसने हमारे स्टैंप लगाई, हम अंदर गए, तो मैंने कहा क्या हम आखिरी हैं? कहता यस यू आर द लास्ट वन। हमारा सामान उन्होंने लिया, हमें अंदर सामान भी नहीं उठाने दिया। फर्स्ट सीट जो बिल्कुल आप कह के फर्स्ट क्लास को मिलती है ना, सारा जहाज़ फुल था, और आखिर में आपको होता है कि वो चुनी हुई सीटें रह जाती हैं जो वो चाहते हैं कि ना कोई ले, हमें वो सीट्स उन्होंने दिलवाई। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन कीजिए कि मुझे समझ नहीं आई कि ये सब हुआ क्या, और 4 मिनट पहले उन्होंने अल्लाह के हुक्म से जहाज़ को रन पे डाला, काम हो गया ना। अब आज से मैंने घड़ी देखी तो फिर वही टाइम है इधर आपके पास, तो मुझे पता है 1 घंटा आगे है, मैं आपसे 1 घंटा पीछे हूँ इस वक्त। आज भी मैं इस किताब को क्यों पढ़ा रही हूँ, आपको पता है कि अभी भी थोड़ी देर में हमें एक दर्स में जाना है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाती। और यकीन कीजिए ये सब कुछ हमारे पास दूसरी एक सीरीज़ में रिकॉर्ड मौजूद है, और हम इसे सुना भी देंगे आपको, कोई मसला नहीं। लेकिन ये सारी बातें मैंने आज आपसे क्यों शेयर की, आज से इस काम को अपना पैशन बनाएं। अगर मैं जॉब कर रही होती आपके स्कूल में, क्या मेरे पास छुट्टी लेने का हक नहीं था इस मौके पे? अगर मैं आपकी एक पेड टीचर होती, क्या आप मुझे रोक सकते थे इस वक्त जाने से? एक सेकंड में मैंने आपको रेजिग्नेशन लिख देना था कि अभी कुछ दिन मैं नहीं पढ़ा सकती आपको, छुट्टी करें, फिर इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी आके। लेकिन ज़िंदगी के अंदर इन कामों को लाएं, कुछ करना है तो। अब मैं इधर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप में जो साथी स्टूडेंट सीखने आए हैं उनको मैं नहीं कोई कमी कर रही और उनको समझ आ रहा है। अब ये कह दें आप सामने हों तो मज़ा आता है, नहीं होते तो फिर मज़े वाले तो चले जाएं, टेस्ट तो बदलते रहेंगे इधर, कभी बिल्कुल आप मेरे सामने बैठे होंगे, कभी सिर्फ आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो मकसद पे नज़र रखनी है, और साथी और सब लोगों के लिए यही काम है। ये सीरत हम सबको तोड़ रही है अंदर से, किसके लिए काम करते हो? जब कोई नहीं तुमसे पूछ रहा, उस वक्त तुम खुद से पूछते हो, तुम्हें अल्लाह की जवाबदेही का एहसास है? तो सीरत क्यों हमारे दिल पे असर करती है, और सहाबा की जिंदगियां क्यों असर करती हैं? अमली मिसालें, इसीलिए मैंने ये कहानी सुनाई ताकि हम सब ये ना कह दें कि वो उस दौर में तो हो सकता था, आज नहीं होता। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अगर कल हमने फ्लाइट ली है, अल्लाह की कसम खा के कह सकती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फैसला था, हमारे असबाब नहीं थे। आम तौर पे मारूफ है इंटरनेशनल फ्लाइट, फिर 2 घंटे पहले पहुंचो, आधा घंटा रास्ते का, लोगों का दिमाग तो एक दिन पहले ही घूमना शुरू हो चुका होता है, सारी तैयारियां करके भी वो घबरा के यूं से यूं भाग रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और साथ गुस्से से बोल रहे होते हैं। एक लफ्ज़ मेरे शौहर ने नहीं बोला, और गाड़ी में भी स्माइल, चिल करते हुए गए, अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से। कोई बात नहीं, गए तो गए, नहीं गए तो खैर है। मैंने इनको एक गाड़ी में रास्ते में बात कही, बैठते ही मैंने कहा अभी, और मज़े के बस सुलह हुदैबिया पढ़ के गई, पढ़ा के गई। मैंने ने कहा जो सबक आपको दिया था वही आप, मैंने बोल दिया कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना है, अल्लाह से खुश रहना, जो अल्लाह सुब्हान तआला चाहे वही होता है। तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए इस मामले में खैर रखी भी है, तो मैं रहूँगी। तो ये सारी बातें सुनकर अपने आप को चेक किया करें, हालात बदल जाए, काम ना बदले, फिर आप सीरत से फ़ायदा उठाएंगे। तो इसको ख़त्म करती हूँ, आप अपने लिए लेके सोचें कि अगर आप सीखने के लिए अब ये कमिटमेंट नहीं करेंगे तो क्या आप कोर्स कर पाएंगे? नहीं कर सकेंगे। ये सारी मेरी बातें, ये वक्त तकरीबन मैंने 4-5 मिनट लगाए हैं आपको कहानी सुनाने में, वल्लाही इसका मकसद यही था कि आप सबको भी अपने लिए एक अमली मिसाल मिल जाए कि इस कोर्स में जब आपके ऊपर ऐसे हालात हैं जिन हालात में आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो छुट्टी नहीं करनी। ये एक नसीहत ज़िंदगी भर याद रखें, छुट्टी नहीं करनी, काम से नहीं हटना। कह दिया तो कह दिया, देखिए इसकी मिसाल मैं इस तरह समझती हूँ जैसे नमाज है। आपने देखा कि दीन का हर रिचुअल किसी न किसी मौके पे माफ़ हो जाता है, सिवाय नमाज के, सिवाय नमाज के। खड़े हो के नहीं तो बैठ के, बैठ के नहीं तो लेट के, लेट के नहीं तो इशारे से, गाड़ियों पे पढ़ लो, अपनी सवारियों पे पढ़ लो, सलातुल खौफ बना लो, सलातुल कसर बना लो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ना। तो आज सब साथी और स्टाफ और नए हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स लिख लें, ये जो मेरा कोर्स है ना, ये मेरी नमाज है। और नमाज है, वल्लाह ही नमाज है। आप पढ़ें सूरत बनी इसराइल में, अल्लाह ने پوری مخلوق کی بات کر کے کہا کہ قد علم صلاته، اللہ کی ہر مخلوق کو اپنی نماز کا طریقہ پتہ ہے. تو آپ کوئی نمازیں تو نہیں پڑھتے، کوئی چڑیاں توتے، لیکن ان کی نماز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، بندگی. سٹاف کا ایک ایک بندہ خود کو اپنی عدالت میں سمجھے. اگر آپ میرے سامنے آ سکتے تھے اور اب بھی آ سکتے ہیں اور ذرا سا وقت سے لیٹ ہے، تو ابھی پھر بہت اور ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے آپ میں سے ایک بھی ایسا نہیں. ذرا سا ڈھیلے ہونے لگے نا تو فوراً یہ بات یاد کر لیں، کیا میں استاذہ کے لیے جاتی تھی؟ استاذہ ہوتی تو میں چھٹی کرتی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب قرآن ہمارے دلوں کو اتنا توڑ چکا ہے. میں نے اپنے اس سفر کے آغاز سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مجھے جو ذمہ داریاں دی جائیں گی میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، جان پہ کھیلنے. دیکھیے یہ سیرت تو میری زبان بند کر رہی ہے، جان پہ کھیل کے جھنڈے بچا رہے ہیں نا یہ لوگ. ایک ہاتھ ٹوٹتا ہے تو دوسرے پہ، دوسرا ٹوٹا تو گھٹنوں میں جھنڈا دبا لیا. ہم میں سے کوئی پریگننٹ ہو جائے کہتا ہے میں نہیں آ سکتا، مجھے دوسروں کے سامنے وومٹ آئے گی، تو آنے دیجئے، لوگوں کو نہیں پتا آتی ہیں، بس انتظام کر کے بیٹھے، بڑا سا نیپکن رکھے، ایکسکیوز می کر کے اپنے ہاتھ سے لیں اس کو اور لوگوں کو کانوں کان پتہ نہ چلے. میں آپ سے کہوں میں نہیں پڑھا سکتی، مجھے چھینکیں آتی ہیں، تو مجھے چھینکیں آتی ہیں تو پھر آپ مجھے چھٹی دے دیں، کیونکہ چھینکوں سے میری ریکارڈنگ بھی خراب ہوتی ہے اور چھینکیں آنے سے آپ کے پاس میرے جراثیم جاتے ہیں. تو میں تو کہہ سکتی پچھلے 5 سال سے، کیا شاید سے بھی زیادہ، میں تو آپ کو پڑھانا چھوڑ چکی ہوتی. مجھے تو مزہ آتا ہے جب مجھے چھینک آتی ہے، کیونکہ مجھے اتنے لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں. کھانسی ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے پچھلے 15-20 دن سے مسلسل چکے بولنا پڑ رہا ہے، ریسٹ نہیں ہے. اور مجھے آج بھی یقین ہے ایک دن اگر مجھے بالکل نہ بولنے کا موقع دیا جائے یہ سب ٹھیک ہو جائے. ابھی بھی شاید 3-4 چیزیں پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پی لیں گے تو یہ کر لیں تو یہ کھا لیں، لیکن کام تو نہیں چھوڑنا نا. اس کام کو ہر قیمت پہ میں نے کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک ایسا گروہ تیار ہوں گے کہ ہم رہے نہ رہے آپ اللہ کے کام کرتے رہیں گے. اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ میرے بعد آپ لوگ میرے سے اچھا کام کریں گے. ابھی بھی یہ گمان ہے، اس وقت میں وہاں نہیں ہوں تو بھی، اور میں دنیا سے چلی جاؤں گی نا، اب مجھے یہ یقین ہے اللہ سے کہ میرے بعد والے لوگ جو آپ لوگ ماشاءاللہ سامنے آ گئے ہیں، آپ لوگ اب میرے بعد جائیں گے. میں اکثر سوچتی تھی بیچ میں، آج سے کچھ سال پہلے بھی، کہ اگر انہی دنوں میں میں مر جاؤں تو یہ کیا کریں. میں نے کچھ باتیں لکھ کے بھی رکھی ہوئی تھیں کہ اگر انہی دنوں میں چلوں، کوئی چیز ہی پوری نہیں ہے، ابھی یہ ادھورا ہے، ابھی وہ ادھورا ہے، ایک سیٹ تو قرآن کا پورا نہیں تھا. تو پھر میں نے سوچا تھا کہ میں ساتھیوں کو اگر مجھے موقع ملے گا نا تو یہ کہہ کے جاؤں گی کہ میں چلی گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے، کام تو نہیں چھوڑنا، ہم دوسروں سے فائدہ لے لیں گے. لیکن الحمدللہ کام اللہ کے ہے، اللہ موقع دیتا جا رہا ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میرے بہت زیادہ اچھا کام کریں گے، اور آپ نے کرنا ہے، کیونکہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. نبی اپنا حصہ ڈال کے چلے گئے. اگر آپ کی وفات کے ساتھ ہی یہ کام ختم ہو جاتا تو پھر تو ناکامی تھی. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے تو قدم ان جگہوں پہ پڑے ہی نہیں جن جگہوں پہ ابو بکر اور عمر کے ذریعے اسلام پہنچ گیا اور جھنڈا لگ گیا اسلام کا، اور حضرت علی اور حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو ہریرہ. علمی طور پہ یہ تو ان علاقوں میں گئے، اللہ کے نبی کو تو موقع نہیں ملا. تو مجھے یقین ہے کہ آج جو چند کلاسز شروع ہوئی ہیں میرے ذریعے سے، یہ بہت تھوڑی ہیں، میرے بعد آپ لوگ زیادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے ان علاقوں اور شہروں کے نام بھی نہیں سنے ہوئے جہاں آپ جائیں گے اور قرآن کا یہ نور پھیلائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق دے.